समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र को देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव बताया। श्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने भारत की सैन्य ताकत देखी। जब पहलगाम आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों के ठिकानों को मिनटों में ध्वस्त किया गया।
Both houses face adjournments amid sloganeering by opposition over various issues on first day of the monsoon session.
सरकार ने कहा, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना की जांच पारदर्शी तरीके से कर रहा है।
Met Department issues red alert for rain in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and orange alert for South Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh today.
यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के मॉस्को में हवाई यात्रा बाधित, 140 से अधिक उड़ानें रद्द, प्रमुख हवाई अड्डे बंद होने से यात्री फंसे।
एंड बांग्लादेश एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन ढाकास उत्तरा, एटलीस्ट 16 पीपल डेड। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Junk Food Day.
जी, दुनिया भर में खाने पीने के शौकीन बहुत लोग होते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आखिर कमाते भी तो खाने के लिए ही हैं। इतना ही नहीं, टेस्टी फूड के लिए लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं। लेकिन जंक फूड डे के दिन हम आपको बताएंगे कि क्या सच में जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक होता है।
Yes, National Junk Food Day is celebrated on July 21st, that is today, and a large menu of items is dedicated to it, allowing us to indulge in meals that we would otherwise avoid. Junk food is by definition heavy in fats, sugar, salt and calories, and it usually has a very little nutritious value. Still, they are really tasty. This National Junk Food Day is the ideal excuse to spoil yourself. Everything is yours to devour in any quantity you choose.
भारत के बड़े शहरों और कस्बों में लोग सबसे ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं। फूड डिलीवरी एप्स के आने से बाहरी खानों ने घर के किचन में अपनी जगह बना ली है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक घर पर खाना बनाना बेहतर है। बाहर का खाने के कारण भारत में हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पूरे साल भर में कभी भी जंक फूड नहीं खाते हैं। जंक फूड डे उन्हें लोगों के लिए है जिससे वो एक दिन बिना चिंता के स्वादिष्ट फूड को चख सकें। वही जो लोग अधिकतर बाहर का खाते हैं वो भी इससे होने वाले नुकसान को समझ सकें। हमारे संवाददाता रहीसुद्दीन ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा अधिकारी शिव आनंद मौर्या से बातचीत की।
जंक फूड वो खाने होते हैं जिसमें शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट और सोडियम कंटेंट काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो जैसा कि देखा गया है, आजकल हमारे देश में जो युवा लोग हैं उसमें जंक फूड कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी फैसिलिटी है जिससे हम घर बैठे खाने का ऑर्डर कर दे रहे हैं। और इन खानों से दिक्कत क्या हो रही है कि जो भी युवा है या जो भी लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे बैठे खाना एनी भी टाइम ऑर्डर कर पा रहे हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके खाने से हमारे जो देश में मोटापा काफी तेजी से बढ़ रहा है। रहा है और मोटापे बढ़ने की वजह से ऐसा देखा गया है, बीपी की समस्याएं हैं, हार्ट की समस्याएं हैं और जो हमारा लीवर है, लीवर काफी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और इसे जो युवा है उसमें मेनली फैटी लीवर की समस्याएं देखने को मिल रही है। कम एज में जो पहले शुगर 45 साल 50 साल में होता था लोगों को, अब वो धीरे धीरे उसका शिफ्टिंग हो रही है और 30 साल 25 साल धीरे धीरे 22 23 साल में भी काफी हद तक लोग प्री डायबिटिक होते जा रहे हैं। तो इसे बचने का एक ही तरीका है कि हम जो है घर का खाना खाएं और वो खाना खाएं जिसमें शुगर कंटेंट कम हो, फैट कम हो, फाइबर रिच डाइट हो, हरी सब्जियां हो, कोशिश करें कि हम एक्सरसाइज करें, पानी का कंटेंट भी हमें ज्यादा लेना है, सबसे जरूरी है कि नींद भी तरीके से लेना। अगर नींद अगर नहीं आएगी तो उससे जो हमारी क्रेविंग है खासकर सोडियम के लिए जो भी साल्टी फूड है उसके लिए बढ़ेगी, तो जो बहुत ज्यादा हानिकारक है सेहत के लिए। हमें गार्जियन से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गार्जियन जो है जो बच्चों को उनके डिमांड पर जो बाहर का खाना ऑर्डर करें उससे बचें और घर का खाना ही खाएं।
Yes, and this year's theme for 2025 is Taste the Memories One Bite at a Time. Well, the theme encourages people to not just eat, but reflect on the memories and emotional experiences tied to junk food, from late night college snacks to carnival churros. The day is about relieving the joy through flavors. So, Neha, let's now listen in to a fun children's rhyme on junk food and healthy food.
Junk food, junk food.
I am the one that is bad for you. I make you weak and very sick. You become lazy and are no more quick.
Once again, please. Healthy food, who are you?
I am the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give you energy all day long.
इससे खाना बनाने की मेहनत भी बचती है।
Yes, so to conclude our discussion on Junk Food Day, Neha, here's some food for thought. Let food be your medicine and medicine be your food.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। सावन माह के दूसरे सोमवार को देश भर के सभी शिवालयों में भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। एक रिपोर्ट।
शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। वहीं खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी शाम 4 बजे विधिवत पूजन अर्चन के साथ ओंकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण पर रवाना होगी। मंदसौर के पशुपतिनाथ और जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सहित प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रशासन ने दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था की है। अभिषेक कटियार, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने डेयरी किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और राज्य में श्वेत क्रांति लाने के लिए कल गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव काला क्षेत्र में एक नई योजना की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सहायता संगठित डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं को दूध उपलब्ध कराने वाले किसानों के लिए होगी।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का एक प्लांट की प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी योजना औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।
वी आर गोइंग टू गिव ₹5 अगेंस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर कोऑपरेटिव। सो दैट स्कीम विल स्ट्रेट वे बेनिफिट 20,000 फार्मर्स। And I am very happy that Assam has started a new scheme targeting the specific goal of increasing milk production.
मुख्यमंत्री के अनुसार ये योजना डेयरी किसानों की उत्पादन बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी क्रांति लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
In a major scientific breakthrough, India has developed a next-generation malaria vaccine that promises to revolutionize global efforts against one of the deadliest parasites affecting humans, Plasmodium falciparum. developed by the Regional Medical Research Center Bhubaneswar, the new vaccine at Felcivax not only offers individual protection but also interrupts community transmission. Our Cuttack correspondent brings us more.
Thanks to cutting-edge protein engineering and years of focused research, India now has a new weapon against malaria. At Felcivax, a recombinant chimeric multi-stage vaccine that is not only advanced but also cost-effective. Dr. Sushil Singh, scientist D at RMRC, explains that at Felcivax provides dual-stage protection. It prevents Plasmodium falciparum infection in humans and also stops its transmission in the community. The vaccine's stability is another game-changer. Unlike existing malaria vaccines, which requires strict cold storage, Ad Falcivax remains potent for over 9 months at room temperature, making it ideal for deployment in remote and under-resourced areas. Ad Falcivax, developed using Lactococcus lactis, a safe bacterial host, holds the promise of broader, more durable and affordable protection. Dr. Sanghamitra Pathy, director RMRC, said, "Our preclinical trials showed sustained efficacy for over 4 months after the booster dose. In human terms, this could mean protection lasting over a decade." The vaccine was developed in collaboration with the National Institute of Malaria Research and National Institute of Immunology, New Delhi. With robust preclinical results now in hand, the Indian Council of Medical Research, ICMR, has invited expression of interest from companies and manufacturers to take the vaccine forward for production, clinical trials, and commercialization. If successful, Ad Falcivax could place India at the forefront of global malaria eradication efforts. With Tapan Maharana, Smriti Rekha Taranya, for Parikrama from Akashvani News.
The International Monetary Fund, IMF, says India leads the world in fast payments, with the Unified Payments Interface, or UPI, recording 18.39 billion transactions in June this year. According to a recent IMF note titled Growing Retail Digital Payments, the Value of Interoperability, UPI has revolutionized India's payment ecosystem. We have more from a correspondent.
Launched in the year 2016 by the National Payments Corporation of India, UPI has revolutionized the country's payment ecosystem by enabling users to link multiple bank accounts to a single mobile app and make instant transactions with ease, IMF said. It has not only simplified peer-to-peer payments but also enabled millions of small businesses to accept digital payments at minimal cost. According to government data, UPI now processes over 18 billion transactions every month, accounting for 85% of India's total digital payments. In June alone, the platform recorded 18.39 billion transactions worth 25.03 lakh crore rupees, a 32% increase from June last year. With 491 million users and 65 million merchants on board, UPI connects 675 banks through a single digital framework. This shift has taken India away from cash and card-based payments and pushed it towards a digital-first economy. Millions of individuals and small businesses now rely on UPI for safe and low-cost transactions. Aishwarya Rai Nigam, Akashvani News, Delhi.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In wrestling, under 23 Asian champion Sumit won the silver medal in the 60 kilogram Greco-Roman category at the Polyak Imre and Varga Janos Memorial 2025 wrestling tournament in Budapest, Hungary yesterday. The Indian wrestler was beaten 5-1 by European champion Nihat Mamadeli of Azerbaijan in the final. And now on to some business news. Domestic benchmark equities bounced back after a muted start today, lifted by strong first quarter results of some major companies, including banking heavyweights. The 30-share BSE Sensex settled at 82,200, up 442 points, or 0.54%, and the NSE Nifty 50 ended the day at 25,090, up 122 points, or 0.49%. In the broader markets, the BSE Mid-Cap Index rose 0.55%, and the Small-Cap Index settled almost flat with a negative bias. In the global crude market, Brent crude was trading lower at $69.01 per barrel, and the WTI crude was also trading down at $67.17 per barrel when reports last came in.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
21st of July is the death anniversary of one of the pioneer leaders of the nationalist movement, Umesh Chandra Banerjee. Born on the 29th of December 1844 in Calcutta, Banerjee went to England to study law in 1864. In 1868, he returned to Calcutta and started his legal practice. He was able to gain a good reputation as a barrister. In 1882, he became the first Indian to be appointed as a standing counsel. He famously defended Surendranath Banerjee in a case in the High Court of Calcutta.
Umesh Chandra Banerjee was the president of the first session of the Indian National Congress in December 1885 at Bombay. In the second session the following year, which was presided over by Dadabhai Nauroji, Banerjee suggested that the party form standing committees for every province to have good coordination of its functioning. Banerjee was president of the party one more time in 1892 at Allahabad.
He also lived in England for a while and practiced law there. While he was a resident there, the Liberal Party gave him a seat to contest in the elections to the House of Commons. Although he was defeated, he became the first Indian to contest elections for the British Parliament. He passed away in Calcutta in 1906, aged 61. AIR News salutes the nationalist leader Umesh Chandra Banerjee.
We remember freedom fighter Jairam Das Daulatram, who was born on the 21st of July 1891 in Karachi, now in Pakistan. In 1915, Jairam Das came into personal contact with Mahatma Gandhi and became his follower. He also participated in the Home Rule movement. Jairam Das joined the Indian National Congress and participated in the non-cooperation movement in 1920. He was also a leading activist in the Salt March and the Quit India movement.
Jairam Das stayed in India during the partition and was appointed the first Indian governor of Bihar. He represented a constituency from Punjab in the Constituent Assembly of India. From 1950 to 1956, Daulatram served as the governor of Assam. He breathed his last on 1st of March 1979.
We also remember the last Mizo Azad Hind Fauj member, Dathoma Rentley, who died on the 21st of July 2019. Born in 1920 in the state's Pukpui village, Rentley had served in the Medical Corps of the Indian Army prior to becoming a freedom fighter. During World War II, he was sent to Malaysia, where he had fought the invading Japanese soldiers. However, he was captured and taken to Singapore as a prisoner of war.
He met Netaji Subhash Chandra Bose when the latter once visited the prison. Following his release, he joined the Azad Hind Fauj and fought the British Army in Myanmar along with fellow rebels and Japanese soldiers. However, they surrendered in the aftermath of the bombings in Hiroshima and Nagasaki. The British convicted Renthalay for waging a war against them and put him behind bars. He was released 2 years later in 1945, following the intervention of Mahatma Gandhi.
The Indian government awarded him the Tamra Patra in 1972 for his role in the struggle for Indian independence. The noble soul breathed his last on the 21st of July 2019 at the age of 99. We salute this great independence fighter.
Yes, and we also remember Shivaji Ganeshan, who passed away on this day in 2001. He was an Indian actor and film producer. He was mainly active in Tamil cinema during the latter half of the 20th century. Shivaji Ganeshan is acknowledged as one of the greatest Indian actors of all time and among the most imitated one by other actors. He was known for his versatility and a variety of roles he depicted on screen, which also gave him the Tamil nickname Nadigar Thilagam, which means the pride of actors. And Ganeshan was the first Indian actor to win the Best Actor Award at the first Afro-Asian Film Festival held in Cairo, Egypt in 1960. Many leading South Indian actors have stated that the acting was influenced by Ganeshan. And in 1997, Ganeshan was conferred the Dada Saab Phalke Award, the highest honor for films in India. And he was also the first Indian actor to be made a Chevalier of the Order of the Arts of Letters. And in addition, he received the National Film Award Special Jury, 4 Filmfare Awards South and 3 Tamil Nadu State Film Awards.
आज पुण्यतिथि है गंगूबाई हंगल की, भारतीय संगीत जगत का चमकता सितारा, जिसने अपनी गायकी से एक मिसाल कायम की थी। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक ऐसी आवाज है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। गंगूबाई हंगल ने अपनी दमदार आवाज और किराना घराने की गायकी से संगीत जगत में ऐसी जगह बनाई है जिसको कोई भर नहीं सकता है। गंगूबाई के योगदान को कई सम्मानों से नवाजा गया। साल 1962 में उन्हें कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार मिला। साल 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण सम्मान दिया। 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1996 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला। 1997 में दीनानाथ प्रतिष्ठान और 1998 में माणिक रत्न पुरस्कार ने उनकी उपलब्धियों को और चमक दी। वहीं गंगूबाई हंगल की विरासत को सम्मानित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने साल 2008 में कर्नाटक स्टेट डॉक्टर गंगूबाई हंगल म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वहीं साल 2014 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। गंगूबाई का जीवन प्रेरणा की मिसाल है। साल 2006 में उन्होंने 75 साल के करियर का जश्न मनाते हुए अपनी आखिरी प्रस्तुति दी थी।
Yes, and Robin Williams was born on this day in 1951. He was an American actor and comedian known for his improvisational skills and the wide variety of characters he created spontaneously and portrayed in drama and comedy films. Williams is regarded as one of the greatest comedians of all time. He received numerous accolades, including an Academy Award, 2 Primetime Emmy Awards, 6 Golden Globe Awards, 5 Grammy Awards, and 2 Screen Actors Guild Awards. Williams was awarded the Cecil B. DeMille Award. Williams won the Academy Award for Best Supporting Actor for Good Will Hunting in 1997. His other Oscar-nominated roles were for Good Morning Vietnam in 1987, Dead Poets Society in 1989, and The Fisher King in 1991. Let's listen into a famous dialogue from his movie, Dead Poets Society.
We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits necessary to sustain life. Poetry, beauty, romance, love. These are what we stay alive for. To quote from Whitman, answer that you are here, that life exists, and identity. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse.
आज भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की पुण्यतिथि है। अरबी शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए थे। ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनियों के स्वरों का इस्तेमाल भी उनका पसंदीदा काम रहा। सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। संगदिल, सैयां, खेल, हलचल और रुस्तम सोहराब जैसी फिल्मों में अनूठा संगीत देने में सफल रहे और सज्जाद साहब उस जमाने में पार्श्व गायकों व गायिकाओं के लिए कठिन फनकार थे, जिनकी धुनों को निभा ले जाना सबके हौसले से परे की चीज थी।
Yes, and Robert Burns passed away on this day in 1796, also known familiarly as Rabbi Burns. He was a Scottish poet and lyricist. He is widely regarded as a national poet of Scotland and is celebrated worldwide. He is best known of the poets who have written in the Scots language, although much of his writing is in a light Scots dialect of English, accessible to an audience beyond Scotland. He also wrote in standard English, and in these writings, his political or civil commentary is often at its bluntest. He is regarded as a pioneer of the Romantic movement, and celebration of his life and work became almost a national charismatic cult during the 19th and the 20th centuries, and his influence has long been strong on Scottish literature.
आज भरत श्रीनिवासन का जन्मदिन है। भरत श्रीनिवासन भारतीय अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं, साथ ही मलयालम, हिंदी और तेलुगु में कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने 2003 में एस जयशंकर माफ करें, उन्होंने 2003 में एस शंकर की फिल्म बॉयज से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वहीं उन्होंने 2004 में फॉर द पीपल से मलयालम फिल्मों में शुरुआत की। उन्होंने तमिल फिल्म कादल में अपनी पहली मुख्य भूमिका के रूप से सफलता मिली।
David Mackenzie Ogilvy passed away on this day in 1999. He was a British advertising tycoon, founder of the Ogilvy and Mather, also known as the father of advertising. Trained at the Gallup Research Organization, he attributed the success of his campaigns to meticulous research into consumer habits. His most famous campaigns include Rolls-Royce, Dove soap and Hathaway shirts.
आज निवेदिता भट्टाचार्य अपना जन्मदिन मना रही है। निवेदिता भट्टाचार्य एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। निवेदिता ने टीवी और फिल्म दोनों में काम किया है। निवेदिता भट्टाचार्य 1997 में आए टीवी शो क्या बात है से डेब्यू किया था। फिर उन्होंने कहानी घर घर की, सात फेरे, सलोनी का सफर, गुनाहों का देवता, कोई लौट के आया है, बालिका वधू जैसे मशहूर सीरियल में काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने क्या कहना, फोबिया, अयारी, द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की है।
Ernest Miller Hemingway was born on this day in 1899. He was an American novelist, short story writer and journalist, known for an economical, understated style that influenced later 20th century writers. He has been romanticized for his adventurous lifestyle and outspoken, blunt public image. Some of his 7 novels, 6 short story collections and 2 non-fiction works have become classics of American literature, and he was awarded the 1954 Nobel Prize in Literature. And also, Neha, I think today we are celebrating the birthday of Yusuf Islam, known by stage name Cat Stevens. He was born on this day in 1948. He's a British singer, songwriter and musician. He has sold more than 100 million records and has more than 2 billion streams. He has received 2 honorary doctorates and awards for promoting peace as well as other humanitarian awards. Let's listen into his hit track, Peace Train. The world is one.
बहुत हुए हैं, लेकिन आनंद बख्शी के गीतों की खासियत उनकी सादगी ही रही। उनके बोल इतने सरल होते हैं कि आम आदमी की जबान उन शब्दों के साथ पल भर में ही सहज महसूस करती है। हर गाने में एक फलसफा और फलसफे का अपना अलग अंदाज, यही वजह रही है कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। यह उनके लिए लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा 41 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया और 4 बार के फिल्मफेयर पुरस्कार विजेता से वो बने।
Yes, and Anand Bakshi was fond of writing poetry since his youth, but he did this mostly as a private hobby. And in 1983 interview with Doordarshan, Bakshi recounted that after his initial studies, he joined the Indian Navy, where due to a paucity of time, he could only write occasionally. He continued to write poetry whenever time permitted. Let's listen into a medley of his hit song.
यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।